मालदीव्स के बीच पर बिल्कुल शांति थी। वो एक फेमस बीच एरिया था, पर माहिरा ने खास उस एरिया को अपने और आरफ के लिए बुक किया था। बीच की ठंडी मिट्टी पर माहिरा आरफ की बाहों में सोई हुई थी। आरफ की आंखें बंद थीं, जबकि माहिरा सोते हुए उसके बालों में धीरे धीरे हाथ घुमा रही थी। उसने उसके कंधे पर सिर रखा और फिर पूछा, तुम्हें यहाँ अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ, इतना सुकून काफी वक्त बाद महसूस किया है मैंने। हम यहाँ कुछ दिन और बिताएंगे ताकि मैं खुद को फ्रेश कर सकूं। बोलते हुए आरव ने अपनी आंखें खोली। माहिरा का चेहरा उसके मुंह पर झुका हुआ था। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, माहिरा ने कहा और फिर अपने होठों को आरव के होठों के करीब लाने लगी। माहिरा आरव को किस करने जा रही थी, तभी उसने काफी स्मार्टली माहिरा को कमर से पकड़ा और उसे जमीन पर लिटाकर उसके ऊपर आ गया। तुम सच में अनप्रिडिक्टेबल हो, माहिरा ने मुस्कुराकर कहा। वो आरव के इस मूव को बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। चलो साथ में वॉक करते हैं, बोलते हुए आरव उठा और उसने अपना हाथ माहिरा की तरफ बढ़ाया। माहिरा उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। उसे थोड़ी हैरानी भी हो रही थी। उसने उसी लहजे में कहा, तुम्हें वॉक करनी है? मुझे लगा तुम तो कुछ और ही करने के मूड में हो। नहीं, इस वक्त मेरा मूड सिर्फ और सिर्फ बात करने का है, आरव ने जवाब दिया। उसके और माहिरा के हाथ इंटरवीन थे और दोनों बीच पर चलते हुए बातें कर रहे थे। हमें यहाँ आए हुए एक दिन हो गया, अब तो बता दो ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से तुम इतनी अपसेट हो, माहिरा ने चलते हुए पूछा। आरव ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मेरा मूड किस वजह से खराब होता है तुम अच्छे से जानती हो। लेकिन तुम तो हॉस्पिटल में थे, फिर तुम छवि सिंघानिया से कैसे मिले? वो तो इंडिया में भी नहीं है, माहिरा ने हैरानी के साथ कहा। वो अच्छे से जानती थी कि आरव का छवि सिंघानिया की वजह से ही अपसेट होता था और आज भी कारण वही था। वो इंडिया में हो या ना हो, लेकिन उसकी हरकतें जारी रहती हैं। तुम बिल्कुल ठीक थीं। वो खुद तो चली गई, लेकिन अपने पीछे से किसी को काम पर लगा कर गई है। उस दिन मीटिंग में मुझे रिलेशनशिप वाली बात ऑफिशियल नहीं करनी चाहिए थी। अब वो सच जानने के पीछे पड़ गई है, आरव ने उसे सब कुछ बता दिया था। आरव की बात सुनकर माहिरा रुक गई, तो वहीं आरव भी रुककर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। आरव की बातों से माहिरा के चेहरे के भाव बिगड़ चुके थे। माहिरा ने सर्द लहजे में कहा, तो क्या उन लोगों को प्रूफ करने के लिए तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो? आरव ने ना में सिर हिलाया। बीच पर हवा चलने की वजह से माहिरा के बाल उड़ रहे थे। उसने दोनों हाथों से माहिरा के बाल सही किए और उसका चेहरा पकड़कर कहा, क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि मैं दूसरों को एक्सप्लेनेशन देता हूँ? तो फिर हम यहाँ क्यों आए हैं, माहिरा ने पूछा। क्योंकि मुझे कुछ पल सुकून से बिताने थे, आरव ने जवाब दिया, तो माहिरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने आरव के कंधे पर सिर रखा और उसका हाथ पकड़कर कहा, तो इसका मतलब मैं तुम्हारा सुकून हूँ। वो दोनों बातें करते हुए फिर से वॉक करने लगे। आरव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बात को बदलते हुए बोला, जब साक्षी के वजह से हॉस्पिटल में रुका था तो इस बारे में पता चला। मुझे भी बहुत गुस्सा आया था, बस कुछ टाइम इन सबसे दूर बिताना चाहता था। आगे की कहानी तुम जानती हो। हॉस्पिटल में तुम किससे मिले जिसकी वजह से तुम्हें सच का पता चला? वहां तो सिर्फ डॉक्टर होते हैं। जहां तक मुझे याद है, हम पूरी देर तक साक्षी के रूम के बाहर थे। वहां उसकी सर्जरी करने वाले सीनियर डॉक्टर और उस लेडी जूनियर डॉक्टर के अलावा और कोई नहीं था जिससे हमारी बात हुई हो। फिर कौन तुम्हारी जासूसी कर रहा है, माहिरा ने हैरानी से पूछा। तुम्हारा वो सीनियर डॉक्टर छवि सिंघानिया का बेटा है। नाउ आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट हिम, वरना मेरा थोड़ा बहुत जो भी मूड सही हुआ है वो फिर से बिगड़ जाएगा, बोलते हुए आरव ने माहिरा को वहीं छोड़ा और तेज कदमों से दूसरी तरफ जाने लगा। आरव की बात सुनकर माहिरा अयान के बारे में सोचने लगी। फिर उसे याद आया कि उसने छवि सिंघानिया के बर्थडे पार्टी पर अयान के साथ डांस किया था। अच्छा, तो वो लड़का आरव का छोटा भाई है, तभी इन दोनों का एटीट्यूड, ईगो और वाइब काफी हद तक मिलती है। तो क्या छवि सिंघानिया ने अपने काम के लिए उसे हायर किया है? कैसी औरत है वो, अपने बड़े बेटे को बर्बाद करने पर तुली है और जरिया भी बना रही है तो अपने छोटे बेटे को। आरव बिल्कुल ठीक कहता है, उसके बारे में तो सोचकर ही मूड अपसेट हो जाता है, बोलते हुए माहिरा ने सिर हिलाया और आरव के पीछे जाने लगी। आरव वहां जाकर आयु को पूरी तरह भुला तो नहीं था, लेकिन अब उसे उसकी याद भी नहीं आ रही थी। वो माहिरा के साथ अपनी रेगुलर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए खुद को कॉल करने की कोशिश कर रहा था। सुबह के लगभग 5 बज रहे थे। गौरवी जी को बेचैनी महसूस होने की वजह से वो जल्दी उठ गई थी और अपने कमरे से बाहर आ गई थी। वहीं कबीर उस वक्त मॉर्निंग वॉक पर जाता था। उसने गौरवी जी को जल्दी उठे हुए देखा तो वो बाहर जाने के बजाय उनके पास गया। क्या हुआ दादी, सब ठीक है ना? आप इतनी सुबह उठती तो नहीं है, कबीर ने हैरानी से पूछा। कुछ ठीक नहीं लग रहा कबीर, गौरवी जी ने सिर पकड़कर कहा। प्लीज आरव को बुला दोगे क्या? कबीर ने गौरवी जी को पकड़ा और उन्हें उनके कमरे में ले जाने लगा। वो चलते हुए बोला, दादी आपको आराम की जरूरत है। मैं ठीक हूँ कबीर,
बस मुझे मेरा आरव अपने पास चाहिए। पता नहीं दिल को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरा बच्चा मुझसे दूर जा रहा है, गौरवी जी ने धीमी आवाज में कहा। उनकी आवाज धीमी होते होते शांत होने लगी। वो कबीर के कंधे पर बेहोश थी। दादी, कबीर उन्हें बेहोश देखकर घबरा गया। वो उन्हें उठाने की कोशिश करने लगा। प्लीज दादी होश में आए, मैं अभी आरव सर को कॉल कर देता हूँ। कबीर ने गौरवी जी को गोद में उठाया और फिर काउच पर लेटा दिया। वो उनके मुंह पर पानी के छींटे मार रहा था, पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अभी तक बेहोश पड़ी थी। आरव सर अच्छे से जानते हैं कि दादी की हालत कितनी खराब है, उनके बिना उनकी तबीयत खराब हो जाती है। फिर भी चले गए, कबीर ने हल्के गुस्से में कहा। वो आरव को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, पर उसका फोन बंद जा रहा था। इससे उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। डिस्कस्टिंग, अगर उनकी वजह से दादी को कुछ हुआ तो मैं भूल जाऊंगा कि वो मेरे बॉस हैं। बोलते हुए कबीर की आंखें नम होने लगीं। उसके लिए गौरवी जी बहुत मायने रखती थीं। कबीर ने गौरवी जी को उठाया और तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले जाने लगा। उनकी अचानक तबीयत खराब होने पर वो बुरी तरह घबरा गया था।